मेरे प्रिय युवा आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 29 दिसंबर 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 के बैच के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं रणविजय मिश्रा वाराणसी उत्तर प्रदेश से, भानु प्रताप सिंह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से और राम कृष्ण लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश से। तो रणविजय, भानु प्रताप और राम कृष्ण, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब कुछ सूचनाएं, क्योंकि आज शुक्रवार है और आपको मालूम है कि शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को देता हूं, लेकिन इस बार उन रूटीन की सूचनाओं के साथ एक नई सूचना भी है। और पहले चलिए हम नई सूचना से शुरुआत कर लेते हैं। मित्रों, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों रविवार, शनिवार और रविवार को आप जानते हैं कि डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है। इस बार उसमें एक दिन और ऐड हो गया है और वह है सोमवार, यानी कि सोमवार को भी डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। और ऐसा क्यों है, इसका कारण आप जानते हैं अगर आप एक साल पुराने श्रोता हैं तो, या फिर यूं कह लीजिए कि आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। मित्रों, 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत हो रही है। हम लोगों का ये अनुभव रहा है कि केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस नए साल के स्वागत के लिए रात भर जगती है, 12 बजे का इंतजार करती है और 31 दिसंबर के जैसे ही रात के 12 बजते हैं पूरे उल्लास के साथ, पूरे ध्वनि नाद के साथ वो नए वर्ष का स्वागत करती है। और बट नेचुरल है कि जब वो रात भर जगती है पूरी दुनिया तो अगला दिन उसका कहीं न कहीं काफी कुछ वक्त सोने में बीतता है। तो हम लोगों का ये अनुभव रहा है कि 1 तारीख को सामान्यतया व्यक्ति स्वतंत्र रहना पसंद करता है। तो आपकी इस स्वतंत्रता को वर्ष के पहले ही दिन बाधित न किया जाए, इस उद्देश्य से 1 जनवरी को भी डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड न करने का निर्णय हम लोग लेते हैं। तो मित्रों, 1 जनवरी को भी यानी कि सोमवार को आपको डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। शनिवार को आपको जो दूसरी चीजें मिलती हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो आपको एज इट इज मिलेंगी, साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र के आपको टोटल 4 आर्टिकल्स मिलते हैं, 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली क्वेश्चन होता है एक आपके मेंस के पैटर्न पर आधारित, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें तो वो आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भी दिया जाएगा। सोमवार के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपको करंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है तो सोमवार को भी करंट कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सामान्यतः आपने देखा है कि जब इस तरह की छुट्टियां होती हैं, जब डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है तो करंट कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया नहीं जाता। तो मित्रों, ये कुछ सूचनाएं थी। आज के मुख्य विषय में मैं आपसे एक अलग ही तरह के टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, और अलग इस मायने में ही है कि मैंने उसका जो फ्रेम बनाया है वो अलग है, अदरवाइज सही मायने में वो आपके करंट अफेयर्स से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। और उसका शीर्षक है आज के मुख्य विषय का, कह लीजिए, वो है परंपरा, कानून और समाज, ट्रेडिशंस, लॉ एंड सोसाइटी। मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन आइए पहले थोड़ी सी दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, न्यूज आपने सुनी होगी, न्यूज में आपने एक शब्द सुना होगा, अबुल कलाम द्वीप, है ना, जहां से इंटरसेप्टिक मिसाइल छोड़ा गया है, अबुल कलाम द्वीप। कभी कभी सिविल सर्विस में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जो स्टेट सिविल सर्विस है या जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनमें तो पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती ही है, लेकिन सिविल सर्विस में भी पूछ लिए जाते हैं। थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको बता दूं किस तरह से इस पर पूछा जा सकता है। पहले इस द्वीप का नाम था व्हीलर आइलैंड द्वीप। ये उड़ीसा में है मित्रों, और उड़ीसा में अगर कोई द्वीप है, देखिए आप सिविल सर्विस की कैसे तैयारी करते हैं, अगर उड़ीसा में कोई द्वीप है तो वो किस सागर में, किस महासागर में कहां होगा, आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए। अगर आपके दिमाग में नक्शा भारत का बिल्कुल क्लियर है, वैसे तो पूरी दुनिया का नक्शा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी गंभीरता के साथ कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जाएगी कि अगर उड़ीसा में यह द्वीप है, अबुल कलाम द्वीप है, तो बट नेचर है कि वो बंगाल की खाड़ी में होगा, क्योंकि आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी ही उधर फैला हुआ है। तो मित्रों ये बंगाल की खाड़ी में है, भुवनेश्वर से जो उड़ीसा की राजधानी है लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसका जो एरिया भी है लगभग लगभग 390-400 एकड़ के आसपास, यानी कि बहुत छोटा सा द्वीप यह है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें बतानी थी। आज मैं आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रेंड्स एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं जो ब्लॉकचेन के ऊपर है। ब्लॉकचेन दरअसल अभी अभी दुबई ने ये अनाउंस किया है कि वो 2020 तक दुनिया का पहला ब्लॉकचेन पावर्ड गवर्नमेंट हो जाएगी। ब्लॉकचेन पावर्ड गवर्नमेंट का मतलब है कि उसका जो सिस्टम है वो यूं कह लीजिए कि डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको वीजा बनवाना है, वीजा एप्लीकेशन है, आपको बिल पेमेंट करना है, आपको लाइसेंस लेना है, इन सब के लिए ऑटोमेटिक तरीके से डिजिटल सिस्टम काम करेगा, और जो बीच के लोग होते हैं काम करने वाले वो खत्म हो जाएंगे। अब 2020 आने में कोई ज्यादा वक्त नहीं है, 2-3 साल के अंदर अंदर वो इस स्थिति में अपने आप को पहुंचा देगा, और इससे उसके धन की भी बहुत ज्यादा बचत होगी। मित्रों यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन ये एक टेक्नोलॉजी है, यूं कह लीजिए कि ये न्यू टाइप ऑफ इंटरनेट है, और ये एक तरीके से डिजिटल लेजर है, खाता बही, जैसे खाता बही होता है ना, तो वो डिजिटली वो खाता बही है जिसमें आप जो भी लेन देन करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, वो डिजिटली उसमें रिकॉर्ड होता चला जाएगा। ये मैंने आपको बहुत ही जनरल स्टडीज के तहत ये बात बताई है मित्रों, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्लॉकचेन की थोड़ी सी जो प्रणाली है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में आप सब अपने अपने लेवल पर जरूर तैयारी करें, क्योंकि मुझे लगता है कि साइंस वाले टॉपिक के तहत ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब मैं आता हूं सीधे आज के मुख्य विषय पर। फ्रेंड्स कल का दिन मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा, ऐतिहासिक दिन रहा है, और वो इसलिए कि लोकसभा ने एक बिल पारित किया है जिसका नाम है मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिकार विधेयक, राइट, जिसके तहत 3 तलाक, 3 बार तलाक कहने के आधार पर जो मुस्लिम महिलाओं को डिवोर्स दे दिया जाता था उसको खत्म करने की बात कही गई है। कल इसका बहुत पार्लियामेंट से सीधे सीधे लाइव टेलीकास्ट भी कुछ चैनल्स पर हुआ था, न्यूज में भी ये बहुत ही प्रोमिनेंटली आया है, और उससे भी ज्यादा प्रोमिनेंटली ये आज के अखबारों में आया हुआ है। तो मित्रों इस पर मैं बात नहीं करने जा रहा हूं, है ना, कि इस बिल में क्या क्या बातें शामिल की गई हैं, तो आज आप अखबारों में पढ़ लीजिएगा, वो दोहराना जैसा ही हो जाएगा, फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करके मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊंगा। अखबारों में है, इस पर खूब सारे आर्टिकल भी आएंगे, आप देखिएगा, इस पर खूब सारे एडिटोरियल कमेंट्स भी आएंगे, आपको ढेर सारी चीजें जानने को, बातें जानने को मिलेंगी। अभी तो लोकसभा ने इसे पारित किया है, अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से अगर पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति जी के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति जी इस पर सिग्नेचर कर देंगे तो अभी तो ये बिल है, उसके तुरंत बाद ये एक्ट बन जाएगा जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिनियम, और फिर वो देश में लागू हो जाएगा। तो मित्रों मैंने यहीं से ये टॉपिक निकाला है, परंपरा, कानून और समाज। सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब कोई घटना घटती है, जैसे देखिए कि मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिकार विधेयक आया, ये एक घटना है और ऐतिहासिक घटना इस मायने में है कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। 1400 साल से जो परंपरा चली आ रही थी 3 तलाक वाली, उसको एकदम इस तरह से बिल आना और उसे अपराध बना देना एक बहुत बड़ी घटना है, और वो भी तब जबकि इतनी मुस्लिम आबादी भारत में है, और इससे पहले 1986 में आप देखिए कि केवल इसी बात को ही स्वीकार नहीं किया गया था कि कोई मुस्लिम महिला को अगर डिवोर्स दे दिया जाता है तो उसको गुजारा भत्ता मिले, इसी को स्वीकार नहीं किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिलना चाहिए, लेकिन संसद ने फिर कानून बना करके कह दिया कि नहीं, ये सब पर्सनल लॉ में ये एक तरह का हस्तक्षेप होगा। और 30 साल में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि अब वही संसद इसके पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। मित्रों, संसद क्या है? देखिए, संसद बेसिकली अगर हम थोड़ा सा फिलोसॉफिकली बात करें तो यह बात अलग है कि विधायिका है, किताबों में आपको विधायिका ही पढ़ने को मिलेगी राज पॉलिटिकल साइंस की किताबों में, लेकिन बेसिकली जो संसद है वो समाज की आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला एक संस्थान है। और जब समाज की आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला हम संस्थान कहते हैं तो सीधी सी बात है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो संसद है वो बेसिकली समाज की आकांक्षाओं का एक आईना है, दर्पण है, जिसमें समाज की आकांक्षाएं दिखाई देती हैं। 30 साल पहले जो मुस्लिम समाज था उसकी जिस तरह की आकांक्षाएं थी वो संसद में दिखाई दी, और उसके तहत गुजारा भत्ता देने तक को गलत ठहराया गया और संसद ने उसे रिजेक्ट कर दिया कानून बना करके कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सोचिए। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कानून की दृष्टि से वह चीज सही थी कि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, कानून राइट, लेकिन संसद कह रही है कि नहीं, नहीं मिलना चाहिए। तो विधायिका तो संसद है, तो ठीक है, संसद की बात रख ली गई। अब विधायिका को यह क्यों लग रहा है कि नहीं, गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए? तो यहीं पर आ जाते ट्रेडिशन कि यह मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम समुदाय है, उसकी अपनी परंपरा रही है। कल के न्यूज में आपने एक शब्द सुना होगा, शरिया, है ना। शरिया बेसिकली क्या है? शरिया मित्रों, जो मुस्लिम जो ट्रेडिशंस से निकला हुआ एक लॉ है, कह लीजिए, जो यह कह लीजिए कि एक इस्लामिक लॉ है ना, जो ट्रेडिशन से निकला है, कुरान से निकला है और तरीकों से जो बना है, तो मुस्लिम समुदाय ने उसे अपने एक कानून के रूप में स्वीकार कर लिया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर विचार किया था वो इसी तथ्य पर विचार किया था कि ये जो शरिया का जो ये कानून है, तीन तलाक वाला, ये कुरान में है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पाया कि नहीं, ये कुरान में नहीं है, इसीलिए उसको उन्होंने गलत ठहरा दिया कि नहीं, ये गलत है तीन तलाक, और उसी को लेकर के फिर संसद ने यहां कानून बनाया। तो मित्रों देखिए, समाज क्या है, अब मैं बात अपनी खत्म करूंगा कि समाज जो है और बेसिकली ट्रेडिशन पे चलता है, राइट। समाज में जो ट्रेडिशन बनते हैं वो एक पर्टिकुलर समय की जरूरतों को देखकर बनते हैं कि अभी हमारी जरूरत क्या है, उस समय का प्राकृतिक वातावरण क्या है, समाज क्या है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं क्या हैं, हमारी अभी की आवश्यकताएं क्या हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रेडिशन बन जाती है। फिर वो ट्रेडिशंस चलने लगती हैं। जब वो ट्रेडिशंस चलने लगती हैं तो हम सब उसके इतने आदि हो जाते हैं कि लगता है कि नहीं, ये तो हमारा कानून जैसा है, ये तो हमारा धर्म का हिस्सा है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो हम उसे लगातार बनाए रखते हैं। तो हमारा वो पर्सनल लॉ जैसा हो जाता है कि नहीं, ये तो हमारे समुदाय का कानून है। ठीक है, भारतीय संविधान में उसकी आजादी है और हम उसका पालन करने लगते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अब आगे कानून है और समाज है, समाज को आगे बढ़ना है, समाज आगे बढ़ जाता है लेकिन ट्रेडिशन ज्यों के त्यों बने रहते हैं, 1000 साल 500 साल पुराने ही होते हैं, जबकि समाज उससे 1000 साल आगे बढ़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो कानून है और जो ट्रेडिशन से जो परंपराएं हैं उनमें टकराव पैदा होता है, उनमें खिंचाव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। जैसे आप तीन तलाक के मामले में देख लीजिए, तो एक तनाव पैदा हुआ, एक खिंचाव पैदा हुआ, और अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए फिर यह जरूरी होता है कि उन ट्रेडिशंस की व्याख्या की जाए, वैज्ञानिक व्याख्या की जाए, यथार्थवादी व्याख्या की जाए, और फिर यह देखा जाए कि ये जो ट्रेडिशन है हमारे समाज को आगे ले जाने में कितना सहायक है, हमारे अब की जरूरतों को ये कितना पूरा कर पा रहा है। ठीक है कि 1500 साल 2000 साल पहले वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा था, वो अपने समय की जरूरतों को पूरा कर रहा था, लेकिन समय उससे अब आगे बढ़ चुका है, तो क्या वो अभी के समय की जरूरतों को पूरा कर रहा है? और ऐसा लगता है कि नहीं, एक तो इसकी जरूरत ही नहीं है, पूरा भी नहीं कर रहा है, बल्कि सही बात, सच तो यह है कि वो समाज के विकास को पीछे खींच रहा है, समाज को आगे नहीं जाने दे रहा है। देखिए यहां मैं जब समाज की बात कर रहा हूं तो आप पूरे समाज को ले लीजिए, समाज के किसी छोटे से अंश को भी ले लीजिए, जैसे तीन तलाक के मामले आप महिलाओं को ले लीजिए, तो हमें देखना होगा कि वो दूसरों के साथ कदम मिलाकर चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे समय में उनकी बकायदे तर्कपूर्ण व्याख्या होनी चाहिए और फिर अगर समाज उसे अपनी तरफ से स्वीकार कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और समाज अगर उसे स्वीकार नहीं करता है तो फिर हमारे सामने वही संसद आती है जो जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक माध्यम है, या फिर न्यायपालिका आती है जो इस बारे में एक तरह से इसकी बड़ी वैज्ञानिक और तार्किक और या कह लीजिए कि कानूनी व्याख्या करके, या संवैधानिक शब्द ज्यादा अच्छा होगा, संवैधानिक व्याख्या करके अपना निर्णय सुनाती है। तो मित्रों ये कुछ बातें मुझे परंपरा कानून और समाज के तहत आपसे करनी थी, और सिविल सर्विस में इस तरह के प्रश्नों की चूंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसे एक दो बार और सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो बात मैंने कही है वह कहीं ना कहीं व्याख्या की भी डिमांड करती है। तो मित्रों अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स की संख्या बहुत कम है, आप सब देख लेंगे। अंतिम चरण है मित्रों ईमेल का चरण। मुझे एक मेल मिला है सौरभ पाठक का, जो मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं। कल मैंने आप सबसे जो मोबाइल फोन है उसमें जो रेडिएशन होता है उससे उसके नुकसान के बारे में बताया था। उन्होंने तीन चार सूचनाएं और दी हैं, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि हम मोबाइल फोन अपने पॉकेट में रख लेते हैं, पैंट की पॉकेट में रख लेते हैं, बोले ऐसा होने से जांग का कैंसर होने का खतरा रहता है। कान पर अगर हम बहुत देर तक मोबाइल लगा करके सुन रहे हैं तो कान का में ट्यूमर होने का डर होता है, और इसी तरह से जब चूंकि जब हम कान पर मोबाइल लगा करके सुनते हैं तो हमारी आंखों के भी ज्यादा करीब होता है, तो हमारे कार्निया में भी डैमेज हो सकता है इसकी वजह से। तो ये चीजें उन्होंने बताई हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सौरभ जी। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। और आप में से ही कुछ दोस्तों के नाम हैं, अमित कुमार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, वीरेंद्र कुमार बेगूसराय बिहार से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, अभय राठौर दरभंगा बिहार से, शांता कुमारी दरभंगा बिहार से, जगवीर सिंह बरेली उत्तर प्रदेश से, अनीश कुमार गुप्ता, सचिन कुमार वर्मा, चंदन सिंह कंवर, सुनील बिश्नोई जोधपुर राजस्थान से, शिवदयाल कुमार बौरई बिहार से, मनीषा कानपुर उत्तर प्रदेश से, और दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इससे पहले कि मैं आप सबसे इजाजत लूं, अब अंत में मैं अपनी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से, एकेडमी के अपने सभी साथियों की ओर से और अपनी ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि यह नया वर्ष आप सबके लिए बहुत ही आनंददायी और सुखदायी हो। और मित्रों अब तीन दिनों के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। 2 जनवरी को आप सबसे फिर मुलाकात होगी और डेली ऑडियो लेक्चर के तहत ढेर सारी बातें भी होंगी। तो मेरा अभिवादन स्वीकार करें मित्रों, नमस्कार।